हेलो और एक नए डीप डाइव में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार और हम सब की हिस्ट्री से जुड़ा है।
बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए।
सही कहा। क्या कभी ध्यान दिया है कि हमारे देश के कितने अलग अलग नाम हैं? जैसे कभी हम इंडिया कहते हैं, कभी भारत कहते हैं,
और कभी कभी हिंदुस्तान भी कहते हैं।
एग्जैक्टली। तो आज की ये नॉलेज जर्नी खास बच्चों के लिए है। हम मिलके ये समझेंगे कि आखिर ये सारे नाम आए कहां से।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल चैप्टर से ले रहे हैं जिसका नाम है इंडिया दैट इज भारत।
ये चैप्टर सच में बहुत डीपली एक्सप्लेन करता है चीजों को। तो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए शुरू में एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन करते हैं।
हाँ, एक विजुअलाइजेशन से बच्चों को जल्दी समझ आएगा।
तो एक बहुत पुराना मैप अपने दिमाग में लाएं। आज के टाइम में तो हमारे पास स्टेट्स हैं, बॉर्डर्स हैं,
पर 500 या 2000 या 5000 साल पहले ये बॉर्डर्स ऐसे नहीं थे।
हाँ, तब ये सब बहुत अलग था। इस पूरे एरिया को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। एक ऐसी जमीन जहां बहुत सारी लंबी रिवर्स हैं और नॉर्थ में आसमान को छूने वाले बड़े माउंटेन्स हैं।
और वक्त के साथ इस सबकॉन्टिनेंट के नाम कैसे बदले, ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग है। जो यहाँ के इनहैबिटेंट्स थे, मतलब जो शुरू से यहाँ रहने वाले लोग थे,
और जो फॉरेनर्स थे यानी बाहर से आने वाले लोग।
सही पकड़ा। दोनों ने अपने अपने नजरिए से इस जमीन को अलग अलग नाम दिए।
तो मैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहला नाम आखिर क्या था।
इसके लिए हमें अपने सबसे पुराने टेक्स्ट की तरफ देखना होगा, जो कि ऋग्वेदा है।
ओ, ऋग्वेदा। ये तो सच में बहुत एंशिएंट टेक्स्ट है।
बिल्कुल। और ऋग्वेदा में इस रीजन को एक बड़ा ही नेचर से जुड़ा नाम दिया गया है, और वो नाम है सप्तसिंधवा।
सप्तसिंधवा सुनने में ही कितना रिदमिक लगता है। अगर हम इसको सिंपल कॉज इफेक्ट में सोचें बच्चों के लिए, तो सप्ताह मतलब 7 यानी 7,
और जो दूसरा वर्ड है सिंधवा, वो स्पेसिफिकली सिंधु वर्ड से आया है।
और सिंधु का मतलब है इंडस रिवर, राइट?
हाँ, इंडस रिवर, या उस जमाने में कोई भी बड़ी रिवर को सिंधु कह देते थे। तो इन दोनों को मिला के क्या बना?
लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों की जमीन। कितना लॉजिकल नाम है।
अर्ली इनहेबिटेंट्स के लिए पानी ही सब कुछ था। उनकी लाइफ रिवर्स के आसपास ही घूमती थी, इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम नदियों पर रख दिया।
तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। रिमेम्बर दिस, ऋग्वेदा सबसे पुराना टेक्स्ट है,
और इसने नॉर्थ वेस्ट एरिया को सप्तसिंधवा कहा, जो इंडस रिवर से जुड़ा है।
ओके, ये तो अर्ली इनहैबिटेंट्स की बात हुई। फिर टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है, एक और बड़ा टेक्स्ट आता है जिसका नाम है महाभारता।
ये एक बहुत ही विशाल एपिक है।
एकदम सही। और जब हम एपिक्स के टाइम में आते हैं तो चीजें और क्लियर होने लगती हैं। महाभारता में हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स के स्पेसिफिकली नाम थे।
जैसे आज का कश्मीर तब कश्मीरा कहलाता था,
और जो आज का केरला है वो महाभारत के टाइम पर भी केरला ही था।
वाओ, मतलब कुछ नाम तो वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन पूरे सब कॉन्टिनेंट का क्या नाम था उस टाइम पे?
उस दौर में पूरे रीजन को डिफाइन करने के लिए दो मेन नाम थे। एक था जम्बूद्वीप और दूसरा था भारतवर्षा।
जम्बूद्वीप, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टर्म है।
इसका मतलब तो एक फ्रूट से जुड़ा है ना?
हाँ बिल्कुल। बच्चों को अगर हम जामुन इमेजिन करने को कहें, वो छोटा सा पर्पल फ्रूट
जो मीठा और थोड़ा हट्टा होता है,
वही फ्रूट। जम्बूद्वीप का सीधा सा मतलब है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री।
एक ऐसा आइलैंड जो मीठे जामुन ट्री से भरा हुआ है। नेचर से कितना गहरा कनेक्शन था उन लोगों का।
और ये सिर्फ टेक्स्ट्स में नहीं था, इसका एक बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। एम्परर अशोका ने अपने टाइम में इस टर्म का यूज किया था।
अच्छा, कब की बात है ये?
अराउंड 250 BCE के टाइम की। उन्होंने जो पत्थरों पर अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, उनमें उन्होंने अपने एम्पायर को जम्बूद्वीप ही कहा था।
250 BCE, उस टाइम तो इसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और थोड़ा अफगानिस्तान भी शामिल था।
सही कहा, ये उनका पूरा बड़ा डोमिनियन था। और दूसरा नाम जो उस टाइम पॉपुलर था वो था भारतवर्षा।
अगर जम्बूद्वीप नेचर पर बेस्ड था तो भारतवर्षा किस पर बेस्ड था?
भारतवर्षा का मतलब है कंट्री ऑफ द भरताज। भरता एक पुराने वैदिक ग्रुप और एंशंट किंग्स का नाम था।
ओ, तो उन किंग्स के क्लैन के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्षा पड़ गया।
एग्जैक्टली। पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों साथ चल रही थी।
सो रिमेम्बर दिस, एम्परर अशोका ने 250 BCE में जम्बूद्वीपा नाम यूज किया था।
जम्बूद्वीपा मतलब आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री, और महाभारता में हमें भारतवर्षा नाम मिलता है।
अब थोड़ा ज्योग्राफी को एंशियंट टेक्स्ट से डीपली कनेक्ट करते हैं। एक और एंशियंट टेक्स्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगी, विष्णु पुराना।
विष्णु पुराना में जो ज्योग्राफी समझाई गई है वो माइंड ब्लोइंग है।
बिल्कुल, उसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि जो लैंड साउथ में ओशन यानी समुन्दर के पास है
और नॉर्थ में स्नोई माउंटेन्स यानी बर्फीले हिमालयास के बीच में है,
उस पूरे लैंड को भारता कहते हैं।
ये डिस्क्रिप्शन इतना एक्यूरेट है कि आज के मैप पर भी नॉर्थ में स्नोई माउंटेन्स और साउथ में ओशन दिखता है।
और मैं एक्साइटमेंट से एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, ये थॉट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं था, साउथ इंडिया में भी बिल्कुल यही ज्योग्राफी का आइडिया था।
सही कहा, एंशियंट तमिल टेक्स्ट भी यही बताते हैं।
हाँ, आज से 2000 साल पहले की एक एंशियंट तमिल पोएम है, उसमें एक किंग की बहुत तारीफ की गई है।
और उस तारीफ में उस किंग के स्टेट के बॉर्डर्स बताए गए, राइट?
एग्जैक्टली, उसमें लिखा है कि उस किंग का रूल केप कुमोरियन यानी साउथ के एक्सट्रीम पॉइंट से नॉर्थ के बड़े स्नोई माउंटेन्स तक था।
इसका मतलब पुराने लोगों को अपनी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पता थी
बिना किसी जीपीएस या सैटेलाइट के।
और इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग को आज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ा जा सकता है।
बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की रूल बुक होती है और हमारी रूल बुक दोनों नामों को रिस्पेक्ट देती है।
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली लाइन में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, और उसके हिंदी वर्जन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। दोनों आइडेंटिटीज को ब्यूटीफुली मिला दिया गया।
तो बच्चों, रिमेम्बर दिस, विष्णु पुराना और एंशियंट तमिल पोएम्स में भारता के बॉर्डर्स बताए गए हैं,
स्नोई माउंटेन्स से लेकर ओशंस तक की जमीन।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों नाम इंडिया और भारत का यूज करता है।
अब मैं एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती हूँ, ये इंडिया और हिंदुस्तान नाम आखिर कहाँ से आए? ये तो किसी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में थे ही नहीं।
ये कहानी है फॉरेनर्स की, जो लोग दूसरे देशों से यहाँ आए, उन्होंने ये नाम दिए।
तो कॉज इफेक्ट्स इसको समझते हैं, सबसे पहले कौन आए?
सबसे पहले पर्शियंस आए, यानी आज के ईरान के लोग। ये बात है लगभग 6th सेंचुरी BCE की। वो लोग ट्रैवल करते हुए इंडस रिवर के पास आए, जिसे यहाँ सिंधु कहा जाता था।
वही सिंधु जहाँ से सप्त सिंधवा निकला था, सही पकड़ा। लेकिन पर्शियंस के साथ एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी, वो लोग एस साउंड ठीक से नहीं बोल पाते थे।
ओ, तो उन्होंने सिंधु का क्या बनाया?
उन्होंने एस को एच से बदल दिया, तो सिंधु बन गया हिंदू या हिंद।
अरे वाह, तो हिंदू वर्ड का ओरिजिन नदी के नाम से हुआ है। और बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ज्योग्राफिकल नाम था, कोई रिलीजन नहीं।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक जमीन का नाम था। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती, इसके बाद एंशियंट ग्रीक्स आए।
ग्रीक्स ने क्या नया ट्विस्ट दिया?
ग्रीक्स ने पर्शियन से ये नया नाम हिंदू सुना, पर ग्रीक्स की लैंग्वेज में एच लेटर को बोलने का रिवाज नहीं था।
तो पर्शियंस ने एस हटाया और ग्रीक्स ने एच हटा दिया।
एग्जैक्टली, ग्रीक्स ने एच ड्रॉप कर दिया और इस एरिया को इंडोई या इंडी के बुलाना शुरू कर दिया।
और वक्त के साथ यही वर्ड इंडोई से इंडिया बन गया। बच्चों देखो, कॉज इफेक्ट कितना क्लियर है, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना इंडोई और इंडोई से इंडिया।
कितना इंटरेस्टिंग चेन रिएक्शन है भाषा का। पर सिर्फ वेस्ट के लोग यहाँ नहीं आए थे।
हाँ, ईस्ट से चाइनीज लोग भी तो आए थे, उन्होंने इस जमीन को क्या बुलाया?
चाइनीज यात्रियों ने सिंधु को सुनकर अपनी लैंग्वेज में यिंदू बुलाया।
यिंदू, ये साउंड तो इंडोई और हिंदू के काफी पास है।
लेकिन चाइनीज लोगों ने एक और स्पेशल नाम रखा, उन्होंने इस जमीन को तियांचू कहा।
तियांचू, इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब है हेवनली मास्टर, क्योंकि चाइनीज लोगों के लिए ये बुद्धा की लैंड थी, एक बहुत ही होली जगह।
ओ वाओ, और चाइनीज ट्रेवलर्स की बात हो और श्वानजांग की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
बिल्कुल, श्वानजांग एक बहुत ही फेमस चाइनीज स्कॉलर थे जो 7th सेंचुरी CE में इंडिया आए थे।
मैंने पढ़ा है कि वो पैदल चलकर और माउंटेन्स क्रॉस करके यहाँ आए थे।
हाँ, और वो यहाँ पूरे 17 साल तक रुके। उन्होंने यहाँ संस्कृत टेक्स्ट पढ़े और उन्हें चाइनीज में ट्रांसलेट भी किया।
17 ईयर्स, ये सच में नॉलेज के लिए बहुत बड़ा डेडिकेशन है। लेकिन एक नाम अभी भी बचा है, हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से शुरू हुआ?
हिंदुस्तान वर्ड की कहानी पर्शियन लैंग्वेज से जुड़ी है। ये नाम आज से लगभग 1800 ईयर्स पहले एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन में पहली बार पाया गया था।
मतलब हिंद वर्ड में पर्शियन लोगों ने स्थान जोड़ दिया, जिसका मतलब लैंड होता है, द लैंड ऑफ हिंद।
एग्जैक्टली,
और ऐसे बना हिंदुस्तान।
ओके बच्चों, रिमेम्बर दिस, पर्शियंस 6th सेंचुरी BCE में आए और उन्होंने सिंधु को हिंदू बनाया।
फिर ग्रीक्स ने एच ड्रॉप किया और इंडोइया या इंडिया बनाया।
और चाइनीज ट्रैवलर स्वांगजेंग 7th century CE में आए थे।
तो आज हमने कितनी सारी बातें जानी, इस पूरे डीप डाइव का एक छोटा सा रिविजन करते हैं। एक ही जमीन के कितने सुंदर नाम है,
सप्तसिंधा,
जम्बूद्वीपा,
भारतवर्षा,
इंडिया
और हिंदुस्तान।
सबके अपने अपने ओरिजिन्स हैं और सबका अपना स्पेशल मीनिंग है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, नेम्स चेंज हो सकते हैं, लोग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं,
लेकिन हमारी कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी हमेशा वैसी ही रही है।
एकता नहीं बदली।
बिल्कुल, नदियों और पहाड़ों से जुड़ा हमारा कनेक्शन वैसा ही है।
तो अब आखिर में सभी सुनने वालों के लिए एक मजेदार सवाल, जरा सोचिए, अगर आज हम स्पेस में ट्रैवल करके एक बिल्कुल नया प्लैनेट डिस्कवर करते हैं,
तो हम उसका नाम कैसे रखेंगे?
क्या हम उसका नाम वहां मिलने वाले किसी स्वीट फ्रूट पर रखेंगे, जैसे पुराने लोगों ने जम्बूद्वीप पर रखा था,
या वहां की किसी बड़ी रिवर या माउंटेन पर?
अपनी इमेजिनेशन यूज कीजिए और इस बारे में जरूर सोचिए कि लैंग्वेज और नेचर कैसे मिलकर नाम बनाते हैं।
ये हिस्ट्री का लेसन फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है। आज की इस नॉलेज जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग, आस्क क्वेश्चंस और कल की हिस्ट्री आज ही समझते रहिए।
अलविदा और अपना ख्याल रखिए।